एक स्थिति की कल्पना करते हैं। घोर अंधकार से भरा कारागार है।
बिल्कुल, और अत्याचारी ने पहले ही 7 बच्चों की हत्या कर दी है।
हाँ, और जिस शत्रु से लड़ाई है ना, वो हर रोज खेल के नियम बदल रहा है।
मतलब जब सामने वाला कोई नियम माने ही नहीं है तो उसे कैसे हराया जाए?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिवस से जुड़े कई स्रोत हैं। हमारा उद्देश्य बस इस दिलचस्प बात का विश्लेषण करना है कि कैसे श्री राम के आदर्शों से निकलकर कहानी श्री कृष्ण की जन्म लीलाओं तक पहुंचती है। तो चलिए सीधे इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल, ये सच में एक बेहतरीन विरोधाभास है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म से ठीक पहले श्री राम की बात आखिर क्यों की जाती है।
हाँ, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन एक तरह से ना खेल के नियमों की तरह है,
जहां सत्य और कर्तव्य सर्वोपरि हैं।
एकदम सही।
लेकिन फिर कौन सा आता है जो सारे नियम तोड़ देता है? तो क्या श्री कृष्ण का अवतार ये बताता है कि जब नियम काम ना आए तो उस अराजकता से कैसे निपटा जाए?
बिल्कुल सही। और इसीलिए आप उनके जन्म का समय देखिए, आधी रात, घोर अंधकार और निराशा का प्रतीक। श्रोत बताते हैं कि भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, यानी अपने 4 भुजाओं वाले ईश्वरीय स्वरूप में।
अच्छा, तो मतलब वो पहले ये सिद्ध करना चाहते थे कि वो रक्षक है।
हाँ, देवकी और वासुदेव को यह विश्वास दिलाने के लिए। उसके बाद ही वे एक साधारण शिशु बन जाते हैं।
अरे वाह, और फिर वो चमत्कार होते हैं जैसे उफनती यमुना नदी का रास्ता देना। लेकिन ऐसा क्यों होता है? प्रकृति अचानक अपने नियम क्यों बदल रही है?
क्योंकि यहाँ प्रकृति एक बहुत बड़ा प्रतीक है। श्रोत समझाते हैं कि जब दुनिया का संतुलन वापस लाने के लिए दिव्य चेतना स्वयं हस्तक्षेप करती है ना,
तो प्रकृति भी उसके सम्मान में अपना मार्ग प्रशस्त करती है।
बिल्कुल। यमुना का शांत होकर रास्ता देना दरअसल जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं के हटने का प्रतीक है।
समझ रही हूँ, मतलब उस घोर अंधकार से निकलकर वो दिव्य प्रकाश गोकुल पहुंचता है, जहां हर तरफ नंद के आनंद भयो का जयघोष है।
हाँ, पूरा उत्सव का माहौल है वहाँ।
लेकिन मुझे यहाँ स्रोतों में एक बात बिल्कुल अटपटी लगी। गोकुल में उत्सव चल रहा है और पूतना नाम की राक्षसी सुंदर रूप धरकर विष पिलाकर उस शिशु को मारने आती है।
जी, ये बहुत ही अहम प्रसंग है।
और स्रोतों में लिखा है कि श्री कृष्ण उसे मोक्ष देते हैं। मतलब एक हत्यारी को मोक्ष, ये तो गले नहीं उतर रहा।
तो ये सच में हैरान करने वाला लगता है, लेकिन यही तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है।
रहस्य? क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि हमारे इरादे मायने ही नहीं रखते?
नहीं नहीं बल्कि स्रोत ये कह रहे हैं कि ईश्वरीय चेतना हमारा बाहरी रूप नहीं बल्कि हमारे अंदर का भाव देखती है।
अच्छा, तो मतलब पूतना बुराई का प्रतीक थी इसलिए उसका अंत हुआ?
हाँ, लेकिन उसने छल से ही सही वो ईश्वर को एक माता की तरह अपनी गोद में लिया था। उस अज्ञानता में छिपे मातृत्व भाव के कारण ही उसे मोक्ष मिला।
ओह, तो जो भी जिस भी भाव से उस परम चेतना के संपर्क में आता है उसका उद्धार निश्चित है।
एकदम सही कहा आपने।
तो अगर केवल धोखे से, मातृत्व का नाटक करने भर से इतनी विशाल ऊर्जा से मोक्ष मिल सकता है, तो गोकुल के लोगों ने इस रहस्यमयी ऊर्जा को कोई नाम कैसे दिया?
यहीं पर यदुवंशियों के कुलगुरु यानी उनके मुख्य विद्वान गर्गाचार्य जी का प्रवेश होता है। वे बहुत ही गुप्त रूप से उस बालक का नामकरण करते हैं, कृष्ण।
केवल कृष्ण ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं?
क्योंकि कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, बिल्कुल एक चुंबक की तरह।
अच्छा,
और आज के समय में इस बात का बड़ा महत्व है। स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि आज के कलयुग में जहां हमारा ध्यान हर सेकंड भटकता है,
हाँ बिल्कुल,
तो ये नाम एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो बिखरे हुए मन को एकाग्र करके शांति और मुक्ति तक ले जाता है।
तो इन सारे स्रोतों का अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि ईश्वर सिर्फ किसी मंदिर या पत्थर की मूरत तक सीमित नहीं है।
जी,
जब हृदय में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होता है तो वो वहीं प्रकट हो जाते हैं, भले ही बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो।
शत प्रतिशत, ये पूरी कथा बाहरी आवरण को हटाकर अंदर के सत्य को पहचानने के बारे में है।
बिल्कुल सही।
और इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार हमारे स्रोतों से आज बाहर आता है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि पूतना जैसी एक राक्षसी जो केवल विषैले दूध के साथ मातृत्व का नाटक कर रही थी, वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है।
तो हमारे इस सामान्य जीवन में क्या हो सकता है?
जी, हमारी सच्ची अम बिना किसी स्वार्थ की और पवित्र भावनाओं की शक्ति कितनी विशाल और परिवर्तनकारी हो सकती है।
इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।